नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना भारत। पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं और शहीदों के आश्रितों के कल्याण व सम्मान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा आयोजित। मुख्यमंत्री 20 मार्च को पेश करेंगे वर्ष 2026-27 का बजट। रंगों का त्यौहार होली कल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। और प्रदेश सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग किया घोषित। सांप के काटने की हर घटना की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना होगा अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना हुआ है। बजट उपरांत आर्थिक विकास को सतत और सुदृढ़ बनाना विषय पर आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज विश्व विश्वसनीय और लचीले विनिर्माण साझेदारों की तलाश में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का अधिक निर्माण करने, अधिक उत्पादन करने और अधिक संपर्क स्थापित करने का इरादा और संकल्प स्पष्ट है।
आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के लिए अपार अवसरों के द्वार खुल गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं और शहीदों के आश्रितों के कल्याण व सम्मान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के पूर्व सैनिक, उनके परिवार प्रदेश के गौरव हैं और देश की रक्षा में उनके अतुलनीय योगदान व सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 2,263 लाभार्थियों को 17 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में सेना भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए 2,28,00,000 रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए मंडी जिला के बरछवाड़ स्थित मेजर सोमनाथ प्रशिक्षण अकादमी के सुदृढ़ीकरण व विस्तार के लिए भी 10,26,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से आरंभ होगा, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सदन की कुल 13 बैठकें होंगी। 20 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। उद्योग व संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 23 से 25 मार्च तक बजट पर चर्चा व कट मोशन प्रस्ताव होगा, जबकि 28 मार्च को सदन में बजट पारित किया जाएगा।
विधानसभा का सेशन है जो सेकंड फेज है, वो हमारा 18 तारीख से शुरू होगा। 18 और 19 तारीख को हमारे गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी। 19 तारीख की शाम को मुख्यमंत्री जी जो है धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। 20 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। बजट की पासिंग जो है वो 28 को जो है वो हो जाएगी।
इस बीच संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्यसभा सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार के नामांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 5 मार्च को शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम निर्णय कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।
कांग्रेस हाई कमांड ने मुख्यमंत्री जी और पीसीसी प्रेसिडेंट से चर्चा की है और कांग्रेस की जो लिस्ट निकलेगी वो राष्ट्रीय स्तर पे इकट्ठी लिस्ट निकलेगी। वो हिमाचल प्रदेश की अकेली लिस्ट नहीं निकलेगी, बहुत सारे स्टेटों में जो कांग्रेस के प्रत्याशियों का चयन होना।
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार पशुधन की गुणवत्ता सुधारने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार पशुपालकों से भैंस का दूध 61 रुपए और गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक गोबर खाद 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, जिससे प्राकृतिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा मिल रहा है। कृषि मंत्री ने आज ज्वाली में आयोजित एक दिवसीय पशुपालक जागरूकता व संवाद शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने किसानों और पशुपालकों को वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध करवाई। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश भर में रंगों का त्यौहार होली कल 4 मार्च को मनाया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। अपने बधाई संदेश में राज्यपाल ने कहा कि रंगों के त्यौहार होली का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करेगा और प्रदेशवासियों के जीवन में नए रंग भरेगा। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि होली उत्सव को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को और मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंगों का ये त्यौहार प्यार, भाईचारे और खुशी का प्रतीक है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने होली पर्व की बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आएगा। प्रदेश सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। इस निर्णय से राज्य में सांप के काटने की हर घटना की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ व सर्पदंश विषाक्तता की रोकथाम व नियंत्रण के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य पद्मश्री डॉ. उमेश भारती ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण व सार्थक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सर्पदंश के मामलों की प्रभावी निगरानी और संवेदनशील क्षेत्रों के मानचित्रण में मदद मिलेगी और समय रहते पीड़ितों की जान बचाई जा सकेगी। डॉक्टर उमेश भारती ने बताया कि सरकार की इस पहल से प्रदेश के सभी अस्पतालों में एंटी वेनम की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंची पंजाब विधानसभा की आश्वासन समिति ने आज विधानसभा सचिवालय शिमला में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल और पंजाब का पुराना नाता है और एक समय पंजाब विधानसभा के सत्र भी इसी सदन में आयोजित किए जाते थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ई विधान प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य था, जिसका अनुसरण देश के 22 राज्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति निवास मशोबरा में भव्य बसंत उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। राष्ट्रपति निवास के प्रबंधक संजू डोगरा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्सव में हिमाचली संस्कृति के साथ साथ देशभक्ति की भावना को प्रमुखता दी गई। वहीं मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास के मार्केटिंग एसोसिएट अजय भारद्वाज ने बताया,
राष्ट्रपति निवास मशोबरा में वसंत उत्सव का अत्यंत उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे कि विद्यार्थियों, सेना के जवानों, डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने रंगारंग नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्होंने दर्शकों को हिमाचली लोक परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ दिया। प्रस्तुतियों में देशभक्ति की भावना भी स्पष्ट रूप से झलकती रही।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ विश्व के लिए आशा की किरण बना भारत। पूर्व सैनिकों, वीरता पदक विजेताओं और शहीदों के आश्रितों के कल्याण व सम्मान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण 18 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा आयोजित। मुख्यमंत्री 20 मार्च को पेश करेंगे वर्ष 2026-27 का बजट। रंगों का त्यौहार होली कल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। और प्रदेश सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग किया घोषित। सांप के काटने की हर घटना की सूचना स्वास्थ्य विभाग को देना होगा अनिवार्य। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 9:20 पर। नमस्कार।